हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आयु के बेहोश होने पर मंथन उसे हॉस्पिटल लेकर गया। आरव भी उनके पीछे गया था। वो आयु से मिलना चाहता था, लेकिन साक्षी ने इनडायरेक्टली उसे आयु से दूर रहने को कहा था। आरव को उसकी बात बहुत बुरी लगी। मजबूरी में आरव को वहां से जाना पड़ा। आरव गुस्से में बार पहुंचा और ढेर सारी ड्रिंक कर ली थी। आरव घर जाने को तैयार नहीं था। ड्राइवर ने आरव को समझा बुझाकर गाड़ी में बिठाया और गौरवी जी के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर ड्राइवर आरव को लेकर अंदर गया, जहां वो उनका इंतजार कर रही थीं। आरव को उस हालत में अकेला देखकर वो चौंक गईं और तेजी से उसकी ओर बढ़ीं। क्या हुआ आरव और आयु? गौरवी जी ने घबराकर पूछा। क्या तुमने शराब पी रखी है? बस यही देखना बाकी रह गया था। और आयु कहाँ है? ड्राइवर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, शायद अपने बॉयफ्रेंड के घर पर। उसकी बात सुनकर आरव ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें भी पता चल गया? देखा दादी, आपकी बहू के प्यार के चर्चे हो रहे हैं। गौरवी जी ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में ड्राइवर से कहा, तुम जाओ और सुबह अपनी ड्यूटी पर आ जाना, मैं आरव को संभाल लूंगी। मैम, अगर कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज कॉल कर दीजिएगा, ड्राइवर बोला। गौरवी जी ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी और आरव के बीच जो भी बातें हुई वो तुम किसी से नहीं कहोगे, इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ, है ना? ड्राइवर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन लग रहा है कि आरव सर आज कुछ ज्यादा ही परेशान हैं, आप उनका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। ड्राइवर के जाने के बाद गौरवी जी आरव को लेकर उसके कमरे में लेकर गईं। तुमसे तो मैं सुबह ही बात करूंगी, इतनी पीकर आए हो, गौरवी जी गुस्से में बोली। आरव को बिस्तर पर लेटाकर जाने लगीं तो आरव ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। आरव ने धीमी मदहोश आवाज में कहा, क्या अब आप भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी दादी? आरव के ड्रिंक करने की वजह से गौरवी जी का पारा अच्छा खासा चढ़ गया था। उन्होंने आरव को उंगली दिखाते हुए कहा, देख आरव, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुमसे बात करने का, तुम इस तरह शराब पीकर कैसे आ सकते हो? क्या तुमने एक बार भी आयु और मेरे बारे में नहीं सोचा? आरव उठकर बैठते हुए बोला, मैं ही सबके बारे में क्यों सोचूं? कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? और आपकी वो आयु मजाक मजाक में कुछ भी बोल जाती है, मैं उसे आपकी वजह से कुछ नहीं कहता, वरना कोई और होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता, उसे लगता है मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ दादी? गौरवी जी ने गहरी सांस ली। आरव दुखी लग रहा था तो वो वहां से जाने के बजाय आरव के पास बैठते हुए बोली, तुम बुरे नहीं हो बच्चे, लेकिन आजकल लोग हर चीज का दिखावा करते हैं, यहाँ तक कि अच्छाई का भी। तो क्या मैं भी दिखावा करूँ तो अच्छा बन जाऊँगा? आरव ने मासूमियत से जल्दी जल्दी पलकें झपकाकर कहा। गौरवी जी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा लग रहा है तुम फिर से वही छोटे आरव बन गए हो जो हर छोटी छोटी बात पूछता रहता था। आरव ने तुरंत गौरवी जी की गोद में सिर रखकर कहा, मुझे बड़ा नहीं होना था दादी, पता है आयु ने मुझे मेरे मॉम डैड जैसा बताया, क्या मैं उनके जैसा हूँ दादी? बिल्कुल भी नहीं, और तुम कभी हो भी नहीं सकते। तुम आरव गौरवी खुराना हो, ना कि आरव अनुराग खुराना, गौरवी जी उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली। आरव ने पूछा, क्या मैं MCP हूँ अनुराग खुराना की तरह? नहीं, आयु तुम्हें नहीं जानती और न ही अनुराग और छवि के बारे में, गौरवी जी उसे समझाने लगी। आरव ने सिर उठाकर गौरवी जी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है कि वो ना जाने, वरना फिर से मुझे जज करने लग जाएगी। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दादी, जब मुझे कोई जज करता है, भले ही लोग मुझे कुछ भी कहें, हार्टलेस, इमोशनलेस, यहाँ तक कि कैरेक्टरलेस भी, मैं जानता हूँ कि मेरी सच्चाई क्या है, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, पर उसकी बातें सीधे यहाँ लगती हैं, आरव ने अपने सीने पर उंगली रखकर कहा। गौरवी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने कहा, तो क्या तुम्हें इस बात का इतना बुरा लगा कि तुम इतना पीकर आ गए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरव। आरव जल्दी से उठकर बैठा और बोला, नहीं दादी, ये वजह नहीं थी, मैंने इसलिए पी थी ताकि मैं आपका सामना कर सकूं, आज मुझसे एक गलती हो गई थी। गौरवी जी ने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, ऐसी कौन सी गलती हो गई मेरे बच्चे से जो मुझे नहीं पता? आपको नहीं पता कि आज आयु बीमार है, शायद वो ऑफिस में मुझसे छुट्टी छुट्टी मांगने मेरे केबिन में आई थी, लेकिन उस समय मैं और माहिरा इतने करीब थे कि वो हमें देखकर बिना कुछ बोले वहां से चली गई और किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को जब मैं उससे मिलने गया तो वो बेहोश हो गई। मंथन ने मुझे उसके करीब भी नहीं आने दिया और खुद ही उसे हॉस्पिटल ले गया। साक्षी ने तो मिलने तक नहीं दिया, बोलती है मैं उससे दूर रहूं, उसमें ही उसकी भलाई है। उसने कहा कि अब आयु उसके साथ ही रहेगी, मुझे भी उसके साथ रहना है दादी, आरव ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। गौरवी जी ने आगे पूछा, और तुम्हें उसके साथ क्यों रहना है? क्या वो तुम्हारे दिल में बस गई है? दिल में बस जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरे पास तो दिल ही नहीं है, वो मेरे दिमाग में बस गई है दादी। मैं दिन भर बस उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा दादी, आरव ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। गौरवी जी को सुकून सा महसूस हुआ। उन्होंने आरव उठते हुए कहा, चलो इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी तुम आराम करो, तुम्हारी हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। गौरवी जी कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि आरव ने गंभीर आवाज में कहा, दादी आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना, आयु भी चली गई है, अब आप भी? गौरवी जी ने पलट कर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही आरव, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इतना कहकर वो फिर से आरव के पास आकर बैठ गई थी। आरव गौरवी जी की गोद में सिर रखकर सो गया। गौरवी जी आरव के सिर पर हल्के हल्के हाथ घुमा रही थी। आरव को जल्दी ही नींद आ गई। गौरवी जी मन में कहा, कितना परेशान है मेरा बच्चा, और हर बार की तरह मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है, जिंदगी में कभी भी इसे प्यार नहीं मिला, पहले अपने खुद के माँ बाप का तो अब। माता रानी कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि आयु भी आरव से प्यार करने लगे, मैं जानती हूँ कि मंथन बहुत अच्छा है और ये उसके साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन मेरा आरव पहली बार किसी के लिए इतना सोच रहा है, किसी को सच में अपने दिल में जगह देना चाहता है, तो प्लीज उसका दिल मत टूटने देना। कुछ देर बाद गौरवी जी आरव का सिर तकिए पर लेटाकर अपने कमरे में सोने चली गईं। अगली सुबह लगभग 8 बजे के करीब आयु की आंख खुली तो मंथन उसका हाथ पकड़कर पास में बिस्तर पर सिर रखकर सोया हुआ था। बिल्कुल पागल है ये, रात को घर पर जाकर आराम से सो सकता था, लेकिन नहीं, कितना भी समझा दो मेरे लिए बस परेशान रहता है, कितना फर्क है इसमें और उस आरव में, वो दर्द देते नहीं थकता तो ये संभालते, आयु ने मायूसी से कहा। आरव के बर्ताव ने सच में उसे काफी हर्ट किया था। आयु फीकी मुस्कुराहट के साथ मंथन का चेहरा देख रही थी। इस बीच साक्षी उन्हें चेक करने के लिए अंदर आई। अरे आयु तुम उठ गई, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? साक्षी ने अंदर घुसते ही पूछा। बस ठीक रहा है दी, आयु ने बुझे स्वर में कहा। तभी साक्षी की नज़र मंथन पर गई, वो चेयर पर बैठा हुआ था और उसका सिर बेड पर था, मंथन ऐसे ही सो गया था। मैंने इसे समझाया था रूम बुक करके उसमें सो जाएं, या अलग बेड भी था, बिल्कुल पागल है ये लड़का, साक्षी बोली। आयु ने जवाब में कहा, वही मैं सोच रही थी, क्या जरूरत थी मेरे लिए इतना परेशान होने की? साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जानती हो ना, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी तब तक ये चैन की सांस नहीं लेगा।
यही वजह है कि मैं मंथन से इतना प्यार करती हूँ दी, ये अपने वादे पर हमेशा कायम रहता है, ना कि किसी और की तरह जो दिन में 50 बार बोलते हैं कि खैर छोड़िए, आयु ने कड़वाहट से कहा। हालांकि उसने अपनी बात बीच में अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी साक्षी समझ गई थी। साक्षी ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम आरव की बात कर रही हो ना आयु? हम उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं दी, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं, आयु ने जवाब दिया। आयु की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि आरव को लेकर वो कितना ज्यादा दुखी हो रही थी, और इसकी एक वजह ये भी थी कि वो उसका हालचाल पूछने तक नहीं आया था। साक्षी ने तुरंत इसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, अब ऐसा तो मत बोलो, आरव आया था यहाँ पर, लेकिन मैंने उसे मिलने नहीं दिया, तुम्हारी बेहोश होने की वजह से मंथन काफी अपसेट था, मैं नहीं चाहती थी कि वो गुस्से में आरव के साथ बदतमीजी करे, बाकी मुझे भी यही ठीक लगा कि एक बार आरव तुमसे ना मिले तो ज्यादा सही रहेगा, आयु ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। बिल्कुल सही किया आपने, चलिए अब मंथन को जगाइए, वो भी मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। आयु ने इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर दिया था, वो आरव के बारे में सोचकर खुद को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं साक्षी ने भी यही सही समझा। आयु के कहने पर साक्षी ने जैसे ही मंथन को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसे तेज बुखार था। आयु मंथन को बुखार है, लगता है सारी रात ऐसे सोने की वजह से थक गया होगा और उस वजह से बुखार हो गया, साक्षी ने परेशान स्वर में कहा। दीद प्लीज आप इसे सही से लिटाकर मेडिसिन दे दीजिए, मैं डिजायर्स में बात करती हूँ कि आज मंथन छुट्टी पर रहेगा, आयु बोली और अपना मोबाइल देखने लगी। उसकी तबीयत कल रात से काफी बेहतर हो गई थी। साक्षी ने कहा, सिर्फ मंथन ही नहीं, तुम भी ऑफिस नहीं जाओगी। मैंने कल आरव से कह दिया था कि अब तुम कुछ दिन की छुट्टी पर रहोगी। आयु हैरान होकर पूछा, उसने हाँ कह दिया? हाँ करने का कोई रीजन भी तो नहीं था, साक्षी ने जवाब दिया। हालांकि आयु के लिए ये अच्छी खबर थी कि उसे अब आरव का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। आयु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो तो खुशी होगा कि उसे मैं देखने को नहीं मिलूंगी। प्लीज आप मंथन को संभाल लीजिए। इतना कहकर आयु जल्दी से बाथरूम में जाने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दिल इस तरह आरव की तरफ खिंचा चला जाएगा। वहीं साक्षी ने मंथन को जगाकर उसका चेकअप किया और फिर उन्हें घर लेकर गई। दूसरी तरफ डिजायर्स में माहिरा आरव के केबिन के बाहर चक्कर लगा रही थी। दोपहर के 11 बज रहे थे, लेकिन आरव अभी तक ऑफिस नहीं आया था। माहिरा मन में बोली, आरव अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वो आयु का ख्याल तो नहीं रख रहा? वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। अगर आरव को उससे प्यार हो गया तो मेरा क्या होगा? माहिरा अपनी उधेड़ बुन में खोई हुई थी कि तभी आरव ऑफिस आया। आरव को ऑफिस आता देख युवानी दौड़कर उसके पीछे आई। युवानी ने सधे हुए अंदाज कहा, गुड मॉर्निंग आरव सर, गौरवी मैम का कॉल आया था कि आज आप लेट आएंगे। माहिरा ने आरव की तरफ घूर कर देखा और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, दादी मुझे भी तो कॉल कर सकती थी, लेकिन नहीं, और इस युवानी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। माहिरा को वहाँ देखकर आरव समझ गया था उसे आरव से बात करनी होगी। इस वक्त उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था। आरव ने माहिरा को इग्नोर किया और युवानी से बोला, युवानी आज का जो भी काम है वो शेड्यूल करके मेरे केबिन में ले आओ, और मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जब तक कोई जरूरी काम ना हो मेरे केबिन में कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं, मेरा मतलब कोई भी नहीं। युवानी ने कहा, ओके सर, मैं ऑफिस में सबको बता दूंगी। आप चलिए, मैं आपके लिए कॉफी और फाइल्स लेकर आती हूँ। आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, कुछ देर बाद में भिजवा देना, आरव बोला और अपने केबिन में जाने लगा। माहिरा ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आरव ने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माहिरा ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, एक ही रात में इसे क्या हो गया? कल तो जरूर कुछ हुआ होगा। मुझे उस मॉडल से जाकर बात करनी होगी, वैसे वो भी आज नहीं दिख रही है। माहिरा आयु को ढूंढते हुए शूटिंग एरिया में जाने लगी। इस बीच युवानी कॉफी के साथ आरव के केबिन में गई। आरव, युवानी कहाँ है? आरव ने उसे देखते ही पूछा। युवानी ने कहा, सर वो शायद सेकंड फ्लोर पर गई है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन अभी लिफ्ट में मीशा मिली थी, उसने बताया था। जरूर वो आयु से मिलने गई होगी और वहाँ जाकर फिर से उससे बहस करेगी। ओ गॉड, मैं इसका क्या करूँ? आरव सिर पकड़कर बोला। तभी युवानी ने कहा, लेकिन आरव सर, आज तो आयु मैम छुट्टी पर हैं, कल वो ऑफिस में बेहोश हो गई थी, शायद आप भूल रहे हैं। आरव ने उसकी तरफ देखकर हल्की मायूसी से कहा, हाँ वो कितने दिन बाद आएगी? पता नहीं सर, मंथन सर भी छुट्टी पर हैं, युवानी ने बताया। जैसे ही आरव ने मंथन के भी ऑफिस न आने की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे यही लग रहा था आयु और मंथन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। उन दोनों को साथ होने का सोचकर ही उसका दम घुटने लगा था और आरव अपनी टाई लूज करने लगा। मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? आरव ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा। खुद के इमोशन से सिर्फ आरव ही नहीं, आयु भी लड़ रही थी, जो इस वक्त मंथन के साथ होकर भी न जाने क्यों आरव ने उलझी थी।